एक सर्वे में पाया गया है कि इंडिया में लगभग हर दूसरा इंसान अपनी इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल के बेसिस पर अनहेल्दी है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है, किसी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो कोई डायबिटीज़ की वजह से अपनी पसंद का खाना तक नहीं खा पा रहा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एक हेल्दी और फिट बॉडी असल में होती क्या है, वो क्या छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में लाकर बेटर लाइफ जी सकते हैं, घर में कैसे आंखों की केयर कर सकते हैं, कैसे अपने बालों को झड़ने से और सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने बात करी है डाइट प्लान के बारे में, स्पॉटलेस और ग्लोइंग फेस के लिए खाने की क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आज का एपिसोड कम्प्लीटली डेडिकेटेड है प्रैक्टिकल एडवाइजेस और टिप्स को जिनसे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सो मेक श्योर टू लिसन दिस कन्वर्सेशन विद डॉक्टर साक्षी गुप्ता टिल द वेरी एंड।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदु सचान शो। आज मेरे साथ हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर साक्षी गुप्ता। वेलकम मैम।
थैंक यू मृदु, हाउ आर यू?
आई एम गुड मैम, आप कैसे हो?
मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
तो मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप बताएं कि आपके अकॉर्डिंग एक हेल्दी और फिट बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है।
इसके लिए मृदु, आई वुड से कि हम एक फिट डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, है ना, बिकॉज आज की डेट में अगर हम हेल्थ की बात करें तो परफेक्टली हेल्दी अनफॉर्चुनेटली हम किसी को कह नहीं सकते। वी टॉक अबाउट दी टर्म अपेरेंटली हेल्दी, जो एक हम अगर बात करें कि एक कंपैरेटिवली हेल्दी इंसान की बात हम करते हैं इसमें, तो उसमें मैं कुछ चीजें यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि हम उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं तो वी कैन कंसिडर आवरसेल्फ एज यू नो समवन हेल्दी की, ठीक है, हम फिर भी एक हेल्दी वाले जोन में आते हैं। जैसे कि अगर आप तीन टाइम का मेजर मील्स ले रहे हैं, है ना, जिसको हम एक हेल्दी डाइट की बात करें, और बीच में दो टाइम एक स्मॉल मील्स अगर आप ले पाते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, कोई इशू आपको फेस नहीं हो रहा, आप ये मील्स जो है डेली बेसिस पे ले पा रहे हैं, तो आप जो है अपने आप को हेल्दी मान सकते हैं। बिकॉज मेनी पीपल आर देयर जो ऐसा नहीं कर पाते, उनको अवॉइड करना पड़ता है अगर हम उस चीज के लिए बात करें। या फिर एक हम सेकंड पॉइंट एक उसके साथ ये कंसिडर करते हैं कि अगर आप एक जो है बहुत अच्छी नींद ले पा रहे हैं फॉर अराउंड 6 to 7 hours, कि पेशेंट जो है हमें आके बताते हैं कि हम भाई 6 से 7 घंटे सो पा रहे हैं, तो हमें उनको एक अच्छी क्राइटेरिया में कंसिडर करते हैं कि सुबह उठ के उन्हें पता लग रहा है कि हाँ हमारी नींद अच्छे से पूरी हुई, वी आर फीलिंग फ्रेश, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया हम वो कंसिडर करते हैं एक अच्छी हेल्थ का। और अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल पूरे 24 घंटे का अगर हम स्पैन ले रहे हैं, है ना, उसमें 1 घंटे का अराउंड अगर हम बोले फॉर अराउंड 60 मिनट्स, उसको चाहे हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर लें, पर अराउंड 60 मिनट्स इन 24 आवर्स अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हो विदाउट फेसिंग मच ऑफ इश्यूज, तो आप जो है एक अच्छे हेल्थ के कैटेगरी में माने जा सकते हो, है ना। इफ यू आर हैविंग रेगुलर बावल मूवमेंट्स, आपका डेली जो है पेट साफ होता है, हम एक आम भाषा में एक रेगुलर सब लोगों के लिए हम बताएं
जी,
तो वो एक बहुत एक अच्छा जो है हम उसको क्राइटेरिया मानते हैं। बिकॉज आप ये जानते होंगे सब लोगों ने बहुत एक आम तौर पे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बहुत सारी मतलब मेजोरिटी ऑफ द डिजीजेस जो है वो हमारे पेट से ही बनती हैं
जी,
राइट, कि अगर आपका पेट ठीक डाइजेशन अच्छा है सब चीज, तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा सिम्टम है कि अगर जो है एक संकेत है हम इसको बोलेंगे कि अगर कोई आपको बता रहा है कि मैं डेली जो है मेरा पेट अच्छे से साफ होता है, रेगुलर बावल मूवमेंट्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड साइंस कि आप एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड हियर कि आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, मतलब यहाँ क्लिनिक पे भी बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उनको एक आम तौर पे जो हम डेली यूज में जो चीजें ले रहे हैं, जो हम यूज करते हैं खाने की हैं या अदरवाइज अदर कमोडिटीज हैं जो हमारे डेली यूज में आती हैं, लोगों को उनसे एलर्जी डेवलप हो रही है
जी।
तो मतलब वो पेशेंट आके कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे और हम सोचते हैं कि दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डिजीज, उनके हमने टेस्ट करवा लिए और इन्वेस्टिगेशन हो गई है, कोई डिजीज, कोई पर्टिकुलर कोई पैथोलॉजी नहीं निकल के सामने आती, तो हमें पता लगता है ओके इस पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है जो सिग्निफिकेंटली उनके टेस्ट को तो हैम्पर नहीं कर रही है, बट स्टिल द पेशेंट इज सफरिंग। तो वो बहुत आमतौर जो आमतौर हम जो नॉर्मल खाने की चीजें हो गई, वो बोलते हैं अच्छा जी हमको दूध फॉर एग्जांपल मैं एक अगर लूं, बहुत लोगों को एलर्जीज होने लगी एंड नॉट ओनली गैस्ट्रिक, बहुत पेशेंट्स को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है. कि हम दूध लेते हैं, दही लेते हैं या दे आर हैविंग पनीर, तो जी हमको पिंपल्स निकल आते हैं, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं. मीन्स ये जो है डेली यूज की कमोडिटीज है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, आपकी बॉडी वो चीजें एंड्योर नहीं कर पा रही है
जी.
और जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी सफर कर रही है, दैट मीन्स कि इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि वो आप रेगुलर जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने की कह लीजिए, आप जो यूज करते हैं वो आपको सूट कर रही है, आप उनको एंड्योर कर पा रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस जो मैं मानती हूँ कि एक अच्छी हेल्थ का साइन है.
Okay,
so, these are few points जो आपको कंसिडर करने चाहिए जो लोग भी सुनेंगे इस शो को. कि अगर आप ये सब चीजें कर पा रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली यू नो एंजॉइंग अ हेल्दी बॉडी. लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि वो नहीं हो पा रहा, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि एक जो अच्छी हेल्थ वाली चीज नहीं है.
तो मैम मैं आगे बढ़ने से पहले फूड आइटम्स के बारे में थोड़ा और बात करना चाहूंगा. लाइक यू सेड कि अब कई सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको डेली कंज्यूमिंग जो आइटम्स हैं लाइक खाने की चीजों से ही एलर्जी हो जा रही. तो मैम ये अब ग्रेजुअली ये चीजें इस टाइप के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं, पहले के दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था. तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या हमारे जो डेली आइटम्स आ रहे हैं उनमें कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं या चीजें मिले हुए हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, या फिर क्या कारण है इसके पीछे?
देखो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मृदुल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि हम आजकल के टाइम्स के हिसाब से देख रहे हैं इस चीज को. हमें ये चीजें बहुत ज्यादा मिल रही है उसके मतलब एक मल्टी फैक्टोरियल, ये एलर्जी वाला जो मैं कॉन्सेप्ट कह रही थी मल्टी फैक्टोरियल बन चुका है. हम किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते. और ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि हम अपने घरों में भी देखेंगे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ हमारी एज में रही या अब भी वो जैसे हैं, या हमारे पेरेंट्स की हेल्थ हमारी एज में जैसी थी और वो जितना फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं हम उसके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना. ये सबके लिए एक सोचने वाली चीज है. तो पहले के टाइम में सी उसके बहुत सारे रीजंस जो मैं मानती हूँ वो क्या हो सकते हैं. वन ऑफ द रीजंस पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. अभी आज की डेट में कोई भी चीज हम बोलें कि एक सांस लेने के लिए हवा भी हमें प्योर नहीं मिल पाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं समझती हूँ वो पॉपुलेशन भी है. क्योंकि जो भी चीजें आ रही है, जैसे हम प्रिजर्वेटिव की बात करें, अगर कि प्रिजर्वेटिव डाल के चीजें जो है बनाई जा रही है या मार्केट में दी जा रही है, वो तो किस लिए है? क्योंकि उस इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए
जी,
है ना. और जो ये पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो वी आर यू नो लिविंग इन अ इन सच एरा जहाँ पे हम लोग भाग रहे हैं, है ना. जो हमारी लाइफ है मीन्स हमको सब कुछ कुछ चाहिए
जी.
कि चलो अच्छा ये पैक्ड फूड है, तुरंत ये हो जाए और हम खाएं और निकले काम पे. काम पे हैं तो वहां पे फटाफट ये हो जाए और हम ये कर ले. एक जो ना तो हमारे पास ठीक से खाना खाने का टाइम है, जो सबसे जरूरी एक हेल्दी बॉडी के लिए, जो आप न्यूट्रिशन ही नहीं दोगे अपनी मशीन को अगर हम बोले, तो वो हेल्थ वाली चीज कहाँ से आएगी. पहले के टाइम में सब कुछ प्योर, आप लोग सुनते होंगे शायद कि वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं, दादा नाना जी वगैरह सब बताते हैं कि भाई हम तो जाते थे और डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के खा लेते थे. और अभी क्या है, अच्छे से भाई वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, ये सब करना है. तो वो अभी आजकल की नीड वो वैसी ही बन गई है. हमारा इम्यून सिस्टम उस तरीके से चल रहा है कि हम जो है नेचुरल चीजों को तक एंड्योर नहीं कर पा रहे हैं. और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें जो है न्यूज में आए दिन वो आता रहता है कि कहीं पे कुछ उन्होंने लाइक डिपार्टमेंट्स दे हैव कॉट होल्ड ऑफ कि वो इंजेक्शंस दे रहे हैं एंड दे आर यू नो आर्टिफिशियली ग्रोइंग दीज क्रॉप्स और सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब वैसे मिल रहे हैं. तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. अभी हमें क्या है कि ठीक है हम तो हमें वेट नहीं करना है, फटाफट जो है हमें ये काम होके मिल जाना चाहिए. तो ये जो फटाफट वाली चीज है ये पहले नहीं थी, ना हम उतने एक्टिव हैं अब जितने पहले के टाइम में लोग हुआ करते थे
जी.
ना हम उतनी नेचुरल चीजें ले रहे. आजकल बच्चे आते हैं यहाँ पे क्लिनिक पे एंड पेरेंट्स बताते हैं उनको बेसिकली जो फ्रूट्स हैं वो सूट नहीं कर रहे हैं, है ना. हम तो भी इनको ये नहीं खिला पाते, इनको लाइक ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज खिलाओ तो तुरंत कोल्ड हो जाता है. मीन सी ऑरेंज इज इटसेल्फ रिच इन विटामिन सी जो कि हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, कोल्ड कफ जो रेगुलर इनसे बचाता है. बच्चों को वही चीजें सूट नहीं कर रही है. तो ये जो है इन सबके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही है. वो हमारी इम्यूनिटी जहाँ हैम्पर हो रही है, हमारी इम्यूनिटी जब तक हम स्ट्रांग नहीं रखेंगे उसके पीछे हेल्दी डाइट, टाइमली डाइट आई वुड से, ठीक है, एंड एडिक्वेट रेस्ट जो है बहुत जरूरी है. वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर स्लीप, सोचते हैं कि नहीं सोना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक हमको ये रखना है कि रेस्ट और स्लीप जो है इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नीड ऑफ द बॉडी. जो आप एक वन थर्ड पार्ट ऑफ द डे वी स्पेंड स्लीपिंग, लाइक अगर हम 7 से 8 घंटे की बात करें, है ना, तो वो जो है अगर वो अच्छा जाएगा तो रेस्ट 2/3 ऑफ द डे वुड बी प्रोडक्टिव फिजिकली भी मेंटली भी. तो वो भी एक बहुत जरूरी पार्ट है अपार्ट फ्रॉम यू नो बीइंग फिजिकली एक्टिव. तो वो सबसे पहले तो आज के टाइम के अगर हम हिसाब से बात करें तो हम अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमें मिल रही हैं इस वक्त एनवायरमेंट में, जो भी चीजें हमें खाने के लिए मिल रहा है, हमारी बॉडी उस चीज को एंड्योर कर सके. तो सबसे मेजर रोल तो हमारी इम्यूनिटी का है.
तो मैम अब मैं एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की बात करना चाहूंगा. करेंटली इंडिया में आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं. इसके पीछे क्या रीजंस हैं और आजकल ज्यादा लोगों को चश्मे क्यों लग रहा है?
सी आई वुड से कि ये प्रॉब्लम्स सिर्फ आई वुड से कि इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली जो है बढ़ रही है इशू बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्क्रीन टाइम, राइट. क्योंकि अब सबसे ज्यादा लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स, हमारे सारे काम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप कह लो, वो सब चीजें इन्हीं तक सीमित होकर रह गई हैं. एंड पोस्ट कोविड यहाँ पे लाइक मैंने क्लिनिक पे तो ये चीज देखी ही है स्पेसिफिकली विद किड्स. उनको सारी ऑनलाइन क्लासेस थी, दे हैड टू यू नो वर्क ओवर द लैपटॉप. जो हम पहले उनको मना करते थे कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, मोबाइल पे नहीं देखना है आपको, स्कूल ही उनका वहां पे आ गया अनफॉर्चुनेटली. तो वो जो 1.5-2 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ी बिकॉज दे हैड इंक्रीज स्क्रीन टाइम. और उसके अलावा जो अभी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे उसमें वो सेइंग कि लोग जो है बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने का उनके पास ना तो टाइम है और बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते बिकॉज अब हमारे पास सारा एंटरटेनमेंट सब कुछ वो घर के अंदर ही हो गया है, है ना. टीवी देख लो, लैपटॉप देख लो और मोबाइल पे वेब सीरीज देख लो. तो बाहर जाके जो पहले बोला जाता था कि वॉक बेयर फुट ओवर द ग्रीन ग्रास, उससे आपकी आंखें स्ट्रांग होंगी, है ना, विजन अच्छा होगा, तो इट हैड सम रीजन, है ना. बिकॉज एक उसके पीछे क्या होता है कि प्रेशर पॉइंट्स कुछ बोले जाते हैं, वो हमारे सोल में होते हैं, वो प्रेस होते हैं व्हेन यू वॉक बेयर फुट. एक अच्छी ग्रीनरी में आप जब वॉक करोगे तो आपके आईज को भी वो सूदिंग इफेक्ट देता है, बॉडी को भी और ब्रेन को भी. ठीक है, हम सारा दिन लगे हुए हैं मोबाइल में, लगे हुए हैं लैपटॉप पे, गर्दन झुका के सारा दिन उसी में ही काम कर रहे हैं. दैट पुअर पोस्चर ऑल्सो लीड्स टू यू नो दिस वीक विजन. कि हम वो अगर पूरा दिन वो पोस्चर, अगर आपका काम भी है कि लाइक 7-8 आवर्स आपको लैपटॉप पे काम करना ही करना है ना, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. तो एटलीस्ट वी नीड टू वर्क ऑन आवर पोस्चर. आप कैसे बैठे हैं, किस तरीके से आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ऑन योर आईज. And again, this one of the reasons is air pollution again, जो कि globally unfortunately जो है बहुत बढ़ रहा है. उसकी वजह से भी our eyes are continuously you know exposed to this. जब तक हम जागे हैं our eyes are open. तो pollution तो if it is everywhere, तो our eyes are you know वो हमेशा ही exposed है ही उस pollution को लेके. तो vision तो उसकी वजह से effect आना और specs का लगना जो है ये बहुत इसकी वजह से जो है ये जो है बहुत कॉमन रीजंस आजकल हो गए हैं जिनकी वजह से लोग विजन का बहुत कंप्लेंट्स बताने लगे.
ओके, तो मैम हम घर में किस तरह से अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं, कुछ टिप्स दे दीजिए हमारी ऑडियंस को.
राइट, ओके. तो देखिए सबसे पहले तो जो मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि एक जो है आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से अपनी आईज जो है वॉश करनी चाहिए. लाइक अगर आपका काम है कंटिन्यूअसली लैपटॉप का, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो फॉर से लाइक फॉर एवरी 2-3 आवर्स जो है थोड़ा सा अच्छे से वॉश कर लीजिए आईज को. आईज की एक्सरसाइज जो हम सभी लोग जानते होंगे कि स्कूल में भी वो सिखाई जाती थी, लाइक टू यू नो 1 आर्म डिस्टेंस पे हमने एक पेंसिल या पेन पकड़ लिया है एंड टू मूव इट साइड वाइज राइट से लेफ्ट में हाथ को धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं एंड टू कीप आर आईज फोकस्ड ऑन इट, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं टू कीप आर आईज फोकस्ड ऑन इट, तो उससे जो है आईज की बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। ये एक एक्सरसाइज के लिए अगर हम डेली के आप ये समझ लीजिए 10 मिनट निकाल लीजिए अपने 24 घंटे में से, तो बहुत अच्छे तरीके से आप आईज की अपने केयर कर सकते हैं। इसके अलावा आई वुड से कि जिनको ऑलरेडी जो थोड़ा है चेस्ट पैक्स लगे हुए हैं या विजन का किसी तरह का कुछ इशू चल रहा है, सो दे नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो हाइजीन। ये सबके लिए जरूरी है कि यू नो आसपास डस्ट है या पॉल्यूशन की जैसे हम बात करें, तो एटलीस्ट व्हेन यू आर इंडोर्स ऑफिस में है या व्हेन यू आर एट होम, तो आसपास हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि घर के अंदर डस्ट या डस्ट माइट्स कम से कम हो। And if you are already suffering from कुछ विजन का इशू चल रहा है, तो प्लीज आप आईज का चेकअप एटलीस्ट इट शुड बी एनुअली। कभी कभी हम क्या सोचते नहीं हमने जो स्पेक्स लगाए हैं या जो हम आई ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे, तो सब ठीक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट नो आई मसल्स जो है दे ग्रेजुअली जो है वो वीक होती है। तो इससे अच्छा कि कुछ सडनली हमें कुछ इशू पता चले, एटलीस्ट एनुअली जो है वी शुड गेट आवर आईज चेक्ड। ये जो है हमें इसका एक मेंटेन करना चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट कि कुछ और इशू आए उससे पहले हमें पता लग जाए, तो हम एटलीस्ट उसको टाइमली प्रिवेंट कर सके या टाइमली उसका ट्रीटमेंट करा के क्योर कर सके।
ओके मैम, तो मैम इंडियन घरों में अक्सर ऐसा होता है कि आंख में डस्ट चली गई या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर आता है और कहता है कि गुलाब जल डालो उससे सही हो जाएगा, तो सच में गुलाब जल दवाई की तरह काम करता है या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
देखो दवाई की तरह तो मैं उसको नहीं कह सकती, बट यस इट हैज दैट सूदिंग इफेक्ट। रोज की जो पेटल्स होती है उससे सूदिंग इफेक्ट होता है, लेकिन आईज के लिए सिर्फ तब तक जब तक वो प्योर गुलाब जल है। प्योर का मीन्स कि सिर्फ वो डायरेक्ट रोज पेटल से ऐसी एकदम स्टेरिलाइज्ड या सैनिटाइज कंडीशन में बनाया गया है कि उसमें कोई प्योरिटी ना हो, सॉरी इम्प्योरिटी ना हो, बिकॉज आपकी आईज जो है इतना डेलिकेट पार्ट है आपकी बॉडी का, कोई भी मैं समझती हूँ कोई भी अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि आपकी आईज के साथ कुछ हो जाए। तो जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज ऑफकोर्स दैट इज नॉट दैट प्योर रोज वाटर तो नहीं है, उसमें दे हैव अदर इंग्रेडिएंट्स प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आईज में नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं एट एनी कॉस्ट। उससे अच्छा तो वो ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कुछ भी ऐसा हुआ है तो जस्ट गो फॉर इट, पीने का जो साफ पानी होता है उसको आप लीजिए और अच्छे से आईज को वॉश कर लीजिए, कुछ भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी इस तरीके का पार्टिकल गया होगा आईज में तो वो उससे वो ही निकल जाएगा। वो जो पैक्ड वाले रोज वाटर आते हैं वो तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर आप नेचुरली बना पा रहे हैं और आपको वो प्योर वाला मिल रहा है तो इट डेफिनेटली हैज दैट सूदिंग इफेक्ट। कोई ड्राइनेस आ गई आईज में, इचिंग है और यू नो कभी कभी कुछ इरिटेशन सी फील होती है तो उसमें वो सूदिंग इफेक्ट देता है, बट अगर वो परसिस्ट करता है तो हमें जो है प्रोफेशनल को जो है दिखाना चाहिए, मेडिसिन की उसमें जरूरत पड़ सकती है, बट इट इफ इट इज यू नो समथिंग टेम्पररी कि सडनली ऐसे कुछ हो गया है कुछ चला गया है, तो हम तब जो है या तो सिर्फ प्योर हो वो गुलाब जल या फिर आप साफ पानी लीजिए। इसमें एक्चुअली मैं एक चीज और यहाँ पे मुझे माइंड में आई कि एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमारा इफेक्ट रिएक्शन क्या होता है आप बताओ, आंख में एकदम से तुरंत हमें लगता है कुछ चला गया, सबसे पहला एक्शन क्या होता है हमारा?
आंख में हम खुजलाने लगते हैं, तुरंत हमारा हाथ आंख में जाता है और लगता है कि
ये सबसे खराब है आईज के लिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, होता बहुत मुश्किल है ना कि तुरंत आईज में गया, हमारे पास सोचने के लिए भी टाइम नहीं होता उस वक्त कि भाई हम क्या करें, तुरंत ही होता है कि ओ निकालो फटाफट, आईज रब करने लगते हैं। ये जो है अगर हम इसको रोक देना तो आप ये समझो कि 50% इंजरी से बचा लेंगे हम आईज को। एक तो ऑलरेडी एक पार्टिकल चला गया है आंख में और हम हाथ लगा के उस पार्टिकल के थ्रू आईज को रब कर रहे हैं तो उस वो पार्टिकल और ज्यादा इंजर करेगा आई को
जी।
अगर जो है कुछ सेकंड्स के लिए हम ये चीज को माइंड में बैठा ले और घर में हम जो भी लिसनर्स इस शो को आज सुनेंगे आप इस चीज को बिठा लीजिए माइंड में, हो सकता है पहली बार में ना हो या तुरंत आपका हाथ जैसे ही आंख की तरफ जाए तो आपको तुरंत हो सकता है ये चीज याद आ जाए तो आप रुक जाए, तो सबसे शेयर कीजिए ये वाली चीज तो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और ये बॉडी का एक रिफ्लेक्स रिएक्शन है, हम सभी करते हैं। लेकिन अगर वहां पे हमने बचा लिया और तुरंत जो है पानी का हमारे पास सोर्स हो और हम आईज को वॉश कर देना तो 50% इंजरी हम वही रोक देंगे, पार्टिकल निकल गया तो आगे इंजरी होगी ही नहीं फिर
जी। सो नाउ मैम कमिंग टू आवर फेस, जो सबको अच्छा चाहिए होता है, सब चाहते हैं कि वो खूबसूरत लगे, तो फेस के लिए क्या करना चाहिए, क्लियर स्किन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने फेस का ख्याल रख सकते हैं?
इसमें देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये बिल्कुल सही बात है कि सबको चाहिए कि हमारा फेस जो है ग्लो करना चाहिए
जी,
है ना। तो वो ग्लो कहाँ से आता है? वो आता है इंटरनली। ये सब कहते तो है ना, हम सब सुनते भी हैं और लगता भी है कि नहीं वो पता नहीं कब तक आएगा, कब तक हम वेट करेंगे, तो भाई तुरंत वाला वही अगेन फटाफट वाली चीज चाहिए सबको। बट अगर लॉन्ग लास्टिंग ग्लो चाहिए हमें फेस पे, तो अगेन वो जो है इंटरनली ही आता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगेन योर डाइट, वॉच योर डाइट, कि हमें चाहिए तो सब कुछ अच्छा सा, लेकिन हम जो है खाएंगे जंक, हम खाएंगे भाई बेकरी जाओ और ये केक और वो पेस्ट्रीज, एक्सेस शुगर होगा ना किसी भी चीज में
जी।
तो वो तो समझो एक्सेस तो खैर एनीवेज किसी भी चीज का बुरा ही होता है, बट शुगरी जो फूड होते हैं जो वो टेस्टी और सब दिख रहा होता है ना बेकरी पे, कन्फेक्शनरी शॉप पे, आप ये समझ लो कि अगर उसका एक्सेस हुआ तो पिंपल आना ही आना है। ऑयली स्पाइसी फूड जंक जो भी बाहर सब अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है
जी,
वो आपके फेस पे अच्छा नहीं लगने वाला है बिल्कुल भी। तो हेल्दी डाइट हो, हाइड्रेशन हो अच्छा, यू नो गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर आप लेंगे, और मिनिमल यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स,
ओके,
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन इधर भी मैं बताऊंगी कि बहुत सारे मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो जो पिंपल्स और फेस का कुछ भी ऐसा इशू लेके आते हैं, 90% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम वन और दी अदर गैस्ट्रिक इशू। उनको कोई ना कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती ही होती है, किसी को गैस का इशू है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एसिडिटी का इशू है, दे आर नॉट हैविंग यू नो ज्यादा उनको प्यास नहीं लगती है। तो ये जो है पिंपल्स का मतलब बहुत ही कॉमन रीजन बता रही हूँ मैं, रीजन तो और भी बहुत सारे होते हैं, देर आर सर्टेन डिजीजेज ऑल्सो ये जो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती, वहां पर उनको मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ती है। बट ये वाली कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम खुद से मैनेज कर लें तो शायद हमें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अलग से एक्स्ट्रा मेकअप या कुछ सैलून में जाके कुछ अलग से करवाने शायद नहीं नीड पड़ेगी। आप अगर ये मेंटेन करेंगे ना तो एक वो हेल्दी ग्लो बना रहता है। उसमें भी क्या होता है कि वो पिंपल अगर आ गया है तो एक अगेन जैसे हमने आंख की बात की कि कुछ गिर गया है तो तुरंत वो रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है, ऐसे ही पिंपल आ गया तो तुरंत उसको पॉप करना है
जी,
भाई पिंपल आ गया अच्छा नहीं लग रहा इसको तो हटाना ही पड़ेगा भाई, इसको तो चला दो नाखून हो जाएगा काम। वो जो है एक बार पिंपल चला गया ना लेकिन जो उसका स्कार रह जाता है वो तो भाई मेडिसिन से भी बड़ी मुश्किल से जाता है
जी।
तो ये तो करना ही नहीं है ना, वो पिंपल आपको एक दिन परेशान करेगा, दो दिन परेशान करेगा, उसके लिए जो है कुछ ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट करा लिया या नेचुरल कुछ चीजें होती हैं वो आपने कर लिया, उतना अगर पेशेंस रख लिया ना तो स्कार मार्क नहीं बचेगा, तो वो स्पॉट भी नहीं आएगा एक एडिशनल जो हमारी ब्यूटी को अफेक्ट कर सकता है
जी।
तो ये बहुत जरूरी है। या फिर पिंपल आ गया है तो भाई जाओ फटाफट केमिस्ट की शॉप पे और ले आओ कोई भी ऑइंटमेंट और वो लगा लो, बिकॉज बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं आजकल कि पेशेंट को क्या होता है ना कि अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं उनको, उन्हें मन में क्या रहता है कि भाई मैम तो हफ्ते भर की मेडिसिन दे रही है तो वन वीक में जाएगा, इससे अच्छा तो जी उठाओ कोई स्टीरॉइड, मैं किसी ऑइंटमेंट का नाम नहीं लूंगी, बट जो वो लेके आते ना कि मैम हमने ये लगाया था इससे तो दो दिन में चला गया था और लेकिन अब फिर से आ गया और इसके साथ दो और आ गए हैं तो वो स्टीरॉइड है कि एक्चुअली मतलब इतना ज्यादा कॉमन हो गया ना। अच्छा फिर कौन सी ऑइंटमेंट लगाई थी जी? तो वो निकलता स्टीरॉइड, एक तो डॉक्टर की एडवाइस के बिना है ना, चलो आपको अपॉइंटमेंट आना भी है तो कोई भी डॉक्टर हो, आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है, होम्योपैथिक कोई भी लेनी है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे लेनी नहीं चाहिए। वो जाते हैं जी स्टोर से ले लिया, ऑनलाइन देख लिया, यूट्यूब रेफर कर लिया, वहां पे तो जो है गूगल डॉक्टर आई डोंट नो गूगल पे पढ़ा और ले लिया बस। तो ये जी हम तो रोज लगा के सो जाते हैं, सुबह दाना गायब हो जाता है और शाम को फिर से निकल आते हैं तो उसका क्या फायदा हो रहा है? मतलब आप जो है उसको सिर्फ सप्रेस कर रहे हो एक्चुअली, है ना। स्टीरोइड तो अभी हमने कोविड के टाइम पे तो बहुत एक्सक्लूसिवली स्टीरोइड स्टीरोइड सुना है
जी।
तो आप सिर्फ उसको सप्रेस कर दे रहे हो, और वो अंदर जा रहा है कुछ टाइम बैठ गया अंदर जाके, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स उस मेडिसिन का इफेक्ट जब खत्म हो गया वो दो और लेके आ जाता है। क्या फायदा इस चीज का? एक प्रॉपर आप ठीक से ट्रीटमेंट लेके उस चीज को हटा दो। मीन्स एक वो मैं इसको यही बता रही हूँ कि अगर वो स्कार उसके एक से चार दाने अगर आ गए तो जो हम क्लियर एक अच्छी हेल्दी स्किन ग्रोइंग फेस चाह रहे थे तो वो तो चला ही गया। मीन्स वो तो कुछ महीने के लिए फिर आप भूल जाओ
जी,
क्योंकि ये प्रोसेस तो फिर ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि अपने आप से हम सोच के कि चलो क्या पता इसी से ही चला जाए और हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। वो वाला डॉक्टर का विजिट बचाने के लिए जो हम अपने फेस के साथ ये नाइंसाफी कर रहे होते हैं ना तो वो बहुत ही बुरा लगता है। मीन मतलब मैं पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कई बार कि प्लीज सिर्फ आप ये वन वीक मेडिसिन खा लो, कुछ मत लगाना प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहीं आप जो है मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप ये लगा रहे हो।
तो मैम कई जगह कई गूगल रिपोर्ट्स की जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो कई जगह लिखा होता है कि मास्टरबेशन से पिंपल्स होते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है?
अगर हम देखो और डायरेक्टली बात करें कि एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन मास्टरबेशन एंड हैविंग पिंपल्स तो ऐसा नहीं होता है।
ओके,
बट व्हाट हैपेंस इज इसका जो कॉमन एक कोइंसिडेंस वाला अगर हम अकरेंस बोलें कि उसके टाइम पे हो जाते हैं तो वो उसका क्या रीजन हो सकता है? प्रोबेबल रीजन कि सबसे ज्यादा जो एक वो मिथ है या मास्टरबेशन को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी या बच्चों को नॉलेज नहीं होती, जिस एज में ज्यादा प्रैक्टिस हो रही होती है वो होती है एडोलेसेंट वाली एज
जी।
उस टाइम पे अदरवाइज भी हॉर्मोनल चेंजेस हो ही रहे होते हैं तो एक रीजन होता है कि वो अदरवाइज भी सिम्पल्स निकलते ही है ना कि हॉर्मोन चेंजेस हो रहे हैं पिंपल्स आ रहे हैं। और एक कुछ केसेस में ना ऐसा भी देखा गया है कि एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ मास्टरबेशन के बाद क्या होता है हॉर्मोनल इम्बैलेंस आने लगता है पेशेंट्स में, ऐसा नोटिस किया गया है तो उस इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं।
ओके,
दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड कि मास्टरबेट किया बच्चे ने या किसी भी इंडिविजुअल ने एंड दे स्टार्ट हैविंग पिंपल्स, वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है बिल्कुल भी।
ओके मैम, तो मैम वाटर हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? लाइक कुछ रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि एक्सेसिव वाटर भी हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है, तो पहले बताइए हमारी बॉडी के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें डेली कितने लीटर ऑफ वाटर पीना चाहिए?
देखो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जैसे अभी आपने वो शुगर की बात, किसी भी चीज का एक्सेस हो किसी भी चीज का
जी
तो वो बॉडी के लिए अच्छा होगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, बाकी हम सब जानते हैं जल ही जीवन है ना, सब लोग बोलते हैं हमेशा से, हमने सुना है तो ये भी एक फैक्ट है कि हम कुछ टाइम खाए बिना रह सकते लेकिन पानी पिए बिना तो नहीं रह जाता है ना, वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज वो हमारे बॉडी के आप ये समझो एक सबसे छोटा जो सेल है जिसको कोशिका बोलते हैं, दैट माइन्यूटेस्ट सेल जो हमको मतलब आई से डायरेक्ट दिखता भी नहीं है उसको तक बॉडी ये सॉरी वाटर की नीड होती है टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल डेली फंक्शन। जैसे कि जैसे एक सेल है वहाँ पे उसको डाइजेशन करना है ना, जो भी उसके पास फूड गए हैं रेस्पायर करना है, एक्सक्रीट होगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, डाइजेशन होगा, इन सब चीजों के लिए एक छोटे से सेल को भी पानी की जरूरत होती है
जी।
और इन सबको मिलाकर समझो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूँ तो 60-70% ऑफ आवर बॉडी इट इज मेड अप ऑफ वाटर है ना, तो इतना जब ऑलरेडी पानी है क्योंकि बॉडी को उसकी नीड है, इवन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर वो हमें जो है पानी की जरूरत है, बॉडी के हर एक ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहे उसके लिए पानी बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वो डिपेंड करता है सर आपकी क्वांटिटी पे, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें सब ऑर्गन्स को अलग अलग चाहिए तो हम जो है कैसे ये डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मैं एक वो नहीं बता सकती कि आप जो है इतना पानी लो, वो नहीं हो सकता बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट, योर ज्योग्राफी आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपके पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपकी जनरल हेल्थ कैसी है, बिकॉज देर आर सर्टन पेशेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली दे आर सफरिंग फ्रॉम सर्टन किडनी डिसऑर्डर्स या कुछ उनको हार्ट का इशू है ना, तो उनमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली लें, अगर कोई इंसान ये जानना चाहे कि भाई मैं कितना पानी ले सकता हूँ, तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेट की बात करें पर्टेनिंग टू देयर बॉडी वेट तो पर केजी वेट जो है एक स्टडी के अकॉर्डिंग 30 to 35 ml पानी जो है बोला जाता है कि अगर आप मान लीजिए अब आप 50 किलो के हैं तो लाइक यहाँ पे आपको सीधा क्या करना पड़ेगा 15 to 30 कि इतना ml आपको चाहिए तो ये बन जाता है 1500 ml इज 1.5 liter पानी हो गया
जी,
है ना 1.5 liter तो इतना तो आपको जो है चाहिए ही। उसके अलावा अगर आपको प्यास लगती है तो यू डेफिनेटली कैन हैव मोर वाटर डिपेंडिंग कि अगर आपको कोई और कुछ ऐसा इशू नहीं है जिसमें आपको वाटर मना किया जाए तो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके दिमाग में कि हाँ जी पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है तो भी पीते जाओ दैट इज ऑल्सो नॉट गुड क्योंकि हमारी बॉडी की एक उसको लेने की लिमिट भी होती है। किडनीज के ऊपर बहुत स्ट्रेन आ जाता है उसकी वजह से अगर हम एक डायरेक्ट स्ट्रेन की बात करें बिकॉज किडनी का जो है सबसे मेजर रोल है
जी,
है ना वाटर को बाहर थ्रो आउट करने का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी के ऊपर एक ओवरलोड आ जाता है कई बार क्या होता है किडनी उसको एंड्योर नहीं कर पाती तो वो बॉडी में रिटेन होने लगता है तो पेशेंट स्वेलिंग की कंप्लेन करता है उससे फिर वो एक जगह पे नहीं आएगी स्वेलिंग वो ओवरऑल जनरली बॉडी पे आने लगती है ना। या फिर क्या होगा पेशेंट आके ये बोलते हैं कि हम जैसे ही पानी पीते हैं तुरंत हमें वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है बिकॉज आपकी किडनी वो रिटेन नहीं कर पा रही। किडनी का क्या काम है जितना पानी बॉडी को चाहिए वो रख लो जो सॉल्यूट चाहिए वो रख लो जो एक्स्ट्रा है जो टॉक्सिक है वो बाहर निकाल दो। तो एक्स्ट्रा वाला अभी जितना अगर ज्यादा जाता जा रहा है तो वो तो तुरंत तुरंत निकलेगा है ना मीन्स वो जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो बार बार यूरिन पास करता रहेगा पेशेंट। तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड कि एक जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी किडनी की वो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा था लेटर रन में हो सकता है किडनी के स्ट्रेन आने लगे। एक हम अगर हम इस वेट के अकॉर्डिंग भी देखें कि अगर है तो दिस इज मोर देन इनफ कि अगर आप इतना पानी भी 24 आवर्स के स्पैन में ले पा रहे हैं इट इज गुड।
ओके तो मैम आजकल बहुत कम एज में ही लोगों के बाल भी झड़ने शुरू हो गए बाल सफेद होने लगता है तो इसके पीछे क्या रीजन है।
इसमें भी देखो मतलब मैं वही कहूंगी कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक तो हमारी डाइट है ना क्योंकि कोई भी डिजीज वो सबसे ज्यादा एक जो है रोल क्या प्ले करता है हमारी बॉडी किसी भी डिजीज का अफेक्ट हो बी इट एनीथिंग कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है
जी।
क्योंकि सेम एनवायरमेंट में सेम चीजों का एक्सपोज होके भी अगर एक फैमिली रह रही है अगर हम एग्जाम्पल लें तो हर किसी को सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी का इम्यूनिटी किसी चीज के लिए स्ट्रांग होती है किसी की किसी चीज के लिए स्ट्रांग होती है। तो अगर हम एक यंग एज की बात कर रहे हैं कि बहुत यंग एज में आजकल जो है जल्दी जल्दी बाल झड़ने लगे हैं या सफेद होने लगे हैं तो उसका बहुत मेजर रीजन है कि बच्चे जो है आजकल उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना तो चलता ही नहीं है उनको वो जंक चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आप बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो है इफेक्ट होगा ही। ऊपर से हेयर जो है हम उनको बोलते हैं कि डेड सेल्स से बने होते हैं तो उनको सोचो कि वैसे ही बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा वो डेड सेल कैसे पिक करेगा है ना जो रूट्स के थ्रू न्यूट्रिशन पूरा एक हेयर टिप तक जो जाना चाहिए तो कैसे जाएगा अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो वो पुअर इम्यूनिटी जो है होने लगी है। आजकल जनरल हेल्थ जो है इसी वजह से बच्चों की वीक रहती है मतलब जनरल हेल्थ के लिए कि भाई बच्चा खाता नहीं है जल्दी थक जाता है थोड़ा खेलते हैं थक जाते हैं तो ये जो है यहाँ पे उनकी जनरल हेल्थ अफेक्ट हो रही है वो न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में नहीं है ना तो दे आर गेटिंग सिक मोर एंड मोर तो उसमें भी कुछ ऐसे डिजीजेस भी होने लगी है एक्चुअली यंग एज में जिसकी वजह से जो है बाल जल्दी झड़ रहे हैं या बाल सफेद हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ अनीमिया छोटे छोटे बच्चों में खून की कमी होने लगी है और आयरन एंड प्रोटीन दे आर यू नो वेरी गुड सोर्सेज फॉर हेयर हेल्थ वो बालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए आयरन और प्रोटीन तो वो अगर नहीं मिलता है ठीक से तो हमारे बाल जो है उनकी हेल्थ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रह पाती है। तो एक अनीमिया हो गया और जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी आजकल नेजल एलर्जीज होने लगी बहुत ज्यादा छींके आना साइनस का इश्यूज उन लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाने लगा है कि उनके बाल जो है जल्दी जल्दी सफेद हो जाते हैं। एंड ये जैसे बच्चों के लिए हो गया हम अदरवाइज की बात करें तो स्ट्रेस आई वुड से स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा आजकल की लाइफ को लेके जो है फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसका भी इफेक्ट जो है हमारे बालों की हेल्थ पे आता है दैट ऑल्सो हैम्पर्स द हेयर हेल्थ और उसकी वजह से बहुत बाल झड़ना अगेन पॉल्यूशन वो सैलून के ट्रीटमेंट सेट कराना है, बाल जो लगवा रहे हैं, आई डोंट नो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स में. उसकी वजह से बहुत इफेक्ट आते हैं, मीन्स सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, जर्नी आजकल बहुत सारी चीजें कैरेटीन एंड ऑल दो थिंग्स, बहुत लड़की आती है स्टडिंग इन कॉलेजेस की. हमने ये कराया था मैम 2-3 महीने पहले, और नहीं वो तो खुद से बहुत ही कम होते जो बताते हैं, मुझे पूछना होता है कि अच्छा क्या हुआ था या कुछ भी, तब पता लगता है अच्छा 2 महीने पहले कैरेटिन कराया था, स्मूथनिंग ली थी, बालों का टेक्सचर अच्छा हो गया लेकिन एकदम पतले रह गए बिकॉज दे हैव मैसिव हेयर फॉल. तो ये सब चीजें जो है उनको पूरा प्रॉपर जो पहले हम लोग ध्यान रखा करते थे, कहते थे अच्छा जी तेल लगाओ और ऐसे अच्छा अच्छा वो करो, तेल लगाना तो किसी से नहीं पसंद है ना, बाल चिपचिप हो जाते हैं
जी.
तो वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिकली दोनों चाहिए बालों के लिए, ताकि बाल जल्दी सफेद भी ना हो और झड़े भी कम. तो केयर वाली जो जरूरत है ना वो नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से ज्यादा केसेस आ रहे हैं.
अब मैम मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, उसको डिसेंट लुक में जाना है और उसके बाल सफेद हो चुके हैं, तो क्या वो हेयर कलर करा सकता है या हेयर डाई यूज कर सकता है?
देखो यंग एज के लिए तो मैं बहुत मना करती हूँ बिल्कुल, कि अगर यंग एज है तो नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स हैं अगेन वो बालों की हेल्थ को खराब ही करेंगे, और वो जो ये बाल सफेद हो रहे हैं ना वो चीज और ज्यादा बढ़ने लगती है, बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है. तो अगेन सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हेयर कलर या हेयर डाई लगाने से, लेकिन बहुत लोगों में ऐसा होता है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना पड़ता है. तो यंग लोगों में तो मैं मना ही करती हूँ, बाकी एक एज के बाद ऐसा होता है कि एक एज के बाद तो इन एनी केस बाल सफेद होने ही होने हैं, आप उसको कैसे भी नहीं रोक सकते हो, वो नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है. तो वहां पे कुछ लोग थोड़ा बहुत ट्राई अगर उनको लगता है कि हाँ करना है तो वो लोग कर लेते हैं, बट यंग एज में तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि बिल्कुल भी ना यूज करें.
ओके ओके, तो मैम क्या हेयर रीग्रोथ हो सकती है, और अगर हो सकती है तो किस एज तक हेयर रीग्रोथ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलता है?
देखो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मृदुल, तो मैंने एज का बहुत स्पेसिफिक रोल देखा नहीं है. इट अगेन डिपेंड्स कि किस वजह से हेयर लॉस हो रहा है, पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है, बालों की हेल्थ कैसी है. बिकॉज यू वोंट बिलीव, मतलब मुझे खुद थोड़ा सा हैरानी हुई थी, देयर वाज अ पेशेंट 75 इयर्स ओल्ड लेडी थी और उनको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के सिम्टम्स के जो नॉर्मल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उसके साथ शी हैड मैसिव हेयर फॉल, वही वीकनेस की वजह से बाल झड़ते हैं टाइफाइड के बाद. और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने उनको दी थी, टाइफाइड में उनको रिलीफ आया, ठीक हो गई और उनको हेयर रीग्रोथ भी हुआ. जैसे उनके पहले बाल थे पूरा स्कैल्प, यू वोंट बिलीव उनका आधा स्कैल्प नजर आने लगा था
जी.
और मेडिसिन के बाद पहले उनको टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट दिया, शी गॉट वेल, और फिर हेयर फॉल के लिए शी टुक मेडिसिन, उनका पूरा स्कैल्प कवर हो गया. तो हेयर रीग्रोथ बिल्कुल हो जाती है, उसमें एज का बहुत मेजर रोल मैं नहीं बोलूंगी, अनलेस आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है, हेयर हेल्थ अच्छी है, आप उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, है ना, तो हेयर रीग्रोथ होती है
जी. ओके, तो मैम डायबिटीज के केसेस भी आजकल बहुत कॉमन हो गए, तो फ्रॉम बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दीजिए कि डायबिटीज किसकी वजह से होती है?
देखो डायबिटीज के सबसे दो बड़े रीजंस हैं, वन इज जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है ना तो उन लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स को है तो बच्चों को होगा ही होगा, बट उनके चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड सेकेंड इज आर लाइफस्टाइल, ये वाला फैक्टर जो है अभी बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि यंग एज में, आजकल जो पहले मिडिल एज में होता था ना 50s के बाद ये लोगों को डायबिटीज, अभी 30s में आने लगे हैं पेशेंट्स विद डायबिटीज. तो सबसे मेजर रोल ही वो यही है कि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी है ना, हमारा खाना पीना इरेगुलर हो गया है, वही जंक ले रहे हैं और मैदा चीनी लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो सब जा रहा है और हम बैठे हुए हैं सारा दिन
जी.
तो दैट इज द मेजर कॉज. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान है ना हम उसको बोलते हैं कि बहुत मीठा खा रहा है उसको शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. अगर आप चीनी की चीजें नहीं भी खा रहे हो और सारा दिन बैठे हो, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, तो भी शुगर डायबिटीज हो सकती है. हम जो है उसको मैनेज जो है इन्हीं तरीकों से जो हम बताते हैं ना, तो वो सबसे मेजर रीजन ये दो है.
ओके मैम, तो मैम अगर किसी को डायबिटीज होने वाली है अभी हुई नहीं है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उस पर्सन में?
देखो इसमें जरूरी नहीं है कि कोई सिम्टम्स आए पेशेंट को, क्योंकि प्री डायबिटीज हम उस स्टेज को बोलते हैं कि वो उस वाले फेज में चला गया है ना, कि डायबिटीज हो सकती है पेशेंट को, जरूरी नहीं है कोई सिम्टम्स लेके आए, बट हमको कुछ सिम्टम्स जो है कुछ वेग सिम्टम्स इस तरीके से मिलते हैं कि पेशेंट जो है कंप्लेंट करेगा कि उनको थकावट हो रही है ना, या नींद आ रही है बहुत
जी।
मतलब दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि बहुत फिजिकल एक्टिविटी की उसके बाद भी उनकी बॉडी थक रही है, या वेरीड एपेटाइट हो गया, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर भी वी आर नॉट फीलिंग हंगरी, या मूड डिस्टर्बेंस, मूड के इश्यूज होने लगे हैं बहुत ज्यादा, कि दे आर यू नो फीलिंग इरिटेटेड और एंग्री विदाउट एनी रीजन। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, या उनकी यूरिन फ्रीक्वेंसीज जो है चेंज हो जाती है कि दिन भर में उसमें यूरिन पास नहीं हो रहा, रात में दे आर यू नो पासिंग यूरिन फ्रीक्वेंटली। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो अगर किसी को देखने को मिल रहे हैं तो दे शुड गेट यू नो शुगर लेवल्स चेक्ड, कि हो सकता है ये डायबिटीज के स्टार्टिंग के सिम्टम्स हो।
ओके मैम, तो मैम हमें डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए?
देखो सबसे पहला तो हमें यहाँ पे वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, मींस आपका काम है, इफ यू आर इनटू दैट कि सिस्टम पे काम करना है, या कोई भी आपका ऐसा काम है जो डिमांड करता है आपको 7 से 8 घंटे जो है बैठना पड़ेगा, तो उसके अलावा जो है हमें उस शेड्यूल के अलावा टाइम निकालना पड़ेगा 30 मिनट्स कम से कम कि हम अच्छी एक्सरसाइज करें। ठीक है, गुड मेडिसिन जो एक मेडिकेशन जो है वो साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है दिमाग में कि डायबिटीज है ये तो लाइफ लॉन्ग की हो गई, अब हमें दवाई नहीं खानी
जी।
दवाई खाते रहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन जो है अपना 50% रोल प्ले करती है आपके पैंक्रियाज जहाँ पे इंसुलिन बनता है या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उनको कंट्रोल करने में, तो मेडिसिन अपना रोल है, आप मेडिसिन अपने टाइम पे लीजिए। कई बार क्योंकि पेशेंट होता है ना, जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को लाइक यू शुड गेट योर सेल्फ चेक एवरी 3 मंथ्स, वो हर 3 महीने में चेक करा रहे, उन्हें दिख रहा है कि भाई शुगर अब सब चल रहा है, और डॉक्टर से बिना एडवाइस लिए मेडिसिन छोड़ देते हैं
जी।
तो ये सब चीजें जो है वापस से बढ़ा देती है शुगर लेवल्स को। इसके अलावा खाने पीने में आप ये सोचिए एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम रेगुलर में हम जो सुनते हैं जो बताते हैं, चावल हो गया, एक्सेस ऑफ दिस आलू एंड मीठी चीजें हो गई, जंक फैट्स, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपका ये सब आप अवॉइड करेंगे, आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, तो मैनेज आप अगर मेडिसिन के साथ इन सब चीजों के साथ आपका मैनेज चल रहा है नॉर्मल लिमिट्स के अंदर, अगर शुगर लेवल्स चल रहे हैं तो इनमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यू कैन यू नो हैव सम ऑफ देम। एक ऐसा नहीं होता कि पेशेंट इस चीज को लेके भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेनी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स यू नो दे अंडरगो डिप्रेशन, कि उनकी लाइफ पहले की तरह नहीं रहती, और खाने की चीज को लेके भी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो अगर आप उसको मेंटेन करके चलेंगे ना, तो आप सारी ही चीजें लाइक इन लिमिटेड क्वांटिटीज लेकिन ले सकते हैं। तो दिस इज द गुड पार्ट, अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपकी लाइफ भर के लिए ये चीज आपकी बंद हो गई, ऐसा नहीं होता
जी।
कुछ चीजें जो अवॉइड करने वाली है ये सब आप अवॉइड करें तो यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ।
ओके, तो मैम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के लिए, रात तक के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बता दीजिए फॉर ए हेल्दी एंड फिट बॉडी।
देखो अब इसमें भी मैंने वजह से कि मृदुल की हम एक जनरलाइज डाइट प्लान हर किसी के लिए नहीं दे सकते, बिकॉज एज उनकी डिफरेंट है, उनकी हेल्थ जो है जनरल हेल्थ क्या चल रही है वो डिफरेंट है, अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो किस जगह पे रह रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, या उनके फूड प्रेफरेंसेस है ना, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। एक स्पेसिफिक डाइट प्लान तो किसी के लिए नहीं हो सकता, बट मैं एक जनरल ये बताना चाहूंगी कि आप अपना जो डाइट प्लान है उसको किस तरीके का रख सकते हैं सो दैट यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला जो मैं सभी को ये एडवाइस करती हूँ वो है यू शुड हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। कि हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाया तो अगेन बॉडी डिमांड करेगी, तो जी हमने पूरा अक्षय से पेट भर के खा लिया, दैट इज रियली नॉट गुड। एक यंग एज में तो हमें लगता है डाइजेस्ट हो गया चल गया, लेकिन वो लॉन्ग रन में ये हैबिट अगर बन जाती है तो बहुत परेशान करती है। तो हम उसको अगर स्टार्टिंग के ही डेज मेंटेन करके रखें कि जब आप यंग एडल्ट वाली एज में आ गए लाइक पोस्ट 20 आई वुड से, कि तब से तो ये हैबिट हर किसी की हो जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए बाय गॉड्स ग्रेस, आपको हेल्थ को इश्यू है या नहीं है। हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एक पोर्शन स्मॉल रखें, लाइक एवरी 3 आवर्स आई वुड से की हैव समथिंग कुछ लाइट मील्स जो है वो सबको लेनी चाहिए एंड योर डाइट शुड बी पेंट रिच इन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स. गुड फैट्स जो है वो एक अलग कैटेगरी है, वो जरूरी है बॉडी के लिए है ना, तो वो इंक्लूडेड होने चाहिए हमारी डाइट में. लाइक जैसे ऑयल ले लिया हमने या प्रिजर्व्ड कोई ये फूड हो गए, फूड पैकेट्स हो गए या जंक फूड हो गया, इन दे आर रिच इन बैड फैट, वो तो ये जितना अवॉइड हो सकता है उतना कीजिए. गुड फैट वाली चीजें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड दिस एवोकाडोज एंड ऑल दीज थिंग्स. ये इनमें क्या है कि गुड फैट्स हैं या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ घी, वो अगेन जनरल हेल्थ के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं कि लोग एकदम घी भी बंद कर देते, थोड़ा चाहिए हमारे बॉडी को. तो यू कैन हैव दोज क्वांटिटीज इन दिस ऑर्डर, ये आप रखिए है ना. आपकी डाइट जो है फाइबर रिच होनी चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ सीजनल फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजीज, ये सबको आप अपने डाइट में एक मेजर पोर्शन में रखिए. वेल हाइड्रेशन होना चाहिए, फ्रूट्स जो होते हैं या कुछ ऐसे सैलेड की चीजें हैं क्यूकम्बर एंड ऑल, इनमें अच्छा पानी का क्वांटिटी होती है. तो ये आप लीजिए, इसको जो है अपना डेली का जो डाइट प्लान है इन सब चीजों को डेली में इंक्लूड करके चलिए, तो जो है हम एक हेल्थ की तरफ एक हेल्दी कैटेगरी में रह सकते हैं कि हम ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करके चले. तो
ऑलराइट मैम, सो मैम एट लास्ट आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे द मृदुल सा चांस शो की ऑडियंस को?
ओके, सो द मैसेज वुड बी आई से दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी वेल, बिकॉज सिर्फ आपकी बॉडी है जो आपके लास्ट डे ऑफ योर लाइफ तक आपको अकंपनी करती है, नथिंग एल्स है ना, नो बॉडी एल्स, कोई इंसान नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं. आपका लास्ट डे ऑफ लाइफ तक जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी है, तो उसका जितना आप ध्यान रख सकते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, आप अपनी बॉडी को दीजिए. बिकॉज अभी लाइक मिडल आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लाइक इट्स बीन मोर देन 11 इयर्स नाउ, तो पेशेंट्स के साथ काम करते हुए ना मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है कि पीपल दे कीप बिजी वर्किंग एट देयर ऑफिसेस और कीप वर्किंग फॉर देयर केयर्स एंड ऑल, मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो मी टाइम वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ, दिस शुड बी यू नो वन ऑफ द मोटोज ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज our healthy body is the only thing which accompanies us till the last day of our life. hamari mental health, hamari physical health ke liye pure 24 ghante mein se we should have at least 1 hour, ek ghanta hame jo hai uske liye nikalna chahiye, be it exercises, be it yoga, meditation, dancing, crafting art, anything you like, ya family ke saath time spend karna, because we are you know a social being, society mein reh rahe hain, to hamari जो हम लोगों से मिलना एंड हाउ डू वी यू नो कम्युनिकेट विद देम, द रिलेशंस वी डेवलप, इट हैज इफेक्ट ऑन आवर हॉर्मोन्स. कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में एंड दे आर एक्सक्रीटेड, लाइक दे आर यू नो वो हमारी बॉडी में आते ही तभी हैं जब वी आर डूइंग सर्टेन दीज एक्टिविटीज, और वो हमारी बॉडी को हैप्पी और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. लाइक एक्सरसाइजिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटीज, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो देयर इज अ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, दीज आर दी हैप्पी हार्मोन्स, हमारी बॉडी में ये रिलीज होते हैं एंड दे हेल्प कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी. तो बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि हमें अपने लिए जो मी टाइम हम एक सेल्फ केयर के लिए बोलते हैं वो बहुत जरूरी है. इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, इट इज अबाउट सेल्फ केयर. आप अपना जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे उतना ही अपने लव्ड वंस का ध्यान रख पाएंगे, उतना ही आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे. सो प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ एंड यू नो लविंग योर सेल्फ इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज द नीड ऑफ आवर.
ऑल राइट मैम, दैट्स द एंड ऑफ आवर टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग आवर शो टाइम, शेयरिंग योर एक्सपर्टीज.
थैंक यू सो मच नवीन फॉर कॉलिंग मी हियर, और मैंने आपके और भी शोज सुने हैं, दे आर रियली इंटरेस्टिंग. I hope listeners जो होंगे उनको ये शो अच्छा लगे and they you know they find benefit with that, उनको उससे फायदा मिले and they incorporate all these things in their life.
Yeah, definitely, ma'am. Thank you so much, ma'am.
Thank you, Nikhil. Thank you.
आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और डॉक्टर साक्षी गुप्ता मैम की एडवाइसेस और टिप्स आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे. हमें कमेंट में लिख के जरूर से बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है. इसके साथ ही हमें बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसे एज अ गेस्ट सुनना चाहेंगे. एंड डू सब्सक्राइब टू द मृदु सचान शो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल एपिसोड्स. थैंक यू.